रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं अपनी दोस्त आरजे भावना के साथ और रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर एस बंसल हु इज एमडी मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट विद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16 फरीदाबाद। हम आज बात कर रहे हैं अल्कोहल के बारे में। यूं तो शराब के नशे में और आंखों के नशे में दुनिया मदहोश रहती है, लेकिन एक ऐसा नशा है जिससे हमेशा दूर रहना चाहिए। और मदहोशी का आलम न जाने लोगों के लिए बहुत अच्छा होता होगा, लेकिन अगर सेहत की बात की जाए तो ये मदहोशी का आलम सेहत के लिए बहुत बुरा है। सबसे पहले और सबसे अहम सवाल, कौन सी ऐसी उम्र है जिसमें अगर कोई अल्कोहल पीता है तो उसे क्रिटिकल एज माना जाता है?
21 की एज जो है वो बड़ी क्रिटिकल है कि 21 से अगर आप छोटे हैं
जी
तो आपको इलीगली भी आप यू आर नॉट अलाउड
जी।
और वैसे भी मेडिकली भी ये स्टडीज हुई हैं बहुत सारी कि अगर आप यंगर एज में अल्कोहल लेना शुरू करते हैं, अगर आपने 15 की एज पे अल्कोहल लेना शुरू किया
जी
और उसी के पैरेलल अगर किसी ने 21 की एज के बाद अल्कोहल लेनी शुरू की तो चांसेस ऑफ एडिक्शन में बहुत फ़र्क है। अगर आपने 15 साल की उम्र में अल्कोहल लेना शुरू किया तो आपके 47% चांसेस हैं कि आप एडिक्ट हो जाओगे
जी।
और अगर आपने 21 की एज पे शुरू किया या उसके बाद शुरू किया तो आपके चांसेस सिर्फ 9% हैं कि आप उसके आदि हो जाओगे। तो इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए 21 की एज से पहले किसी को भी अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए
जी। हाँ, शराब का सेवन किसी भी उम्र में मैं तो ये कहूँगी बहुत ही गलत है, लेकिन अगर बात की जाए शराब की या अल्कोहल की तो इससे किस किस हमारे शरीर के अंग पर फर्क पड़ता है या किन ऑर्गन्स को ये डैमेज करता है?
सबसे इम्पोर्टेंट जो है चार ऑर्गन्स हैं जिन पे अल्कोहल का डायरेक्ट असर पड़ता है
जी।
प्रैक्टिकली तो अल्कोहल का सारी बॉडी पे असर पड़ता है
जी,
लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर कोई आदमी लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल लेता है ओवर एक्सटेंडेड पीरियड और बहुत लंबे समय तक लेता है
जी,
तो उसका 20% ऐसे लोगों का लीवर खराब हो जाता है
जी,
तो वो फेटल प्रॉब्लम है, वो इरिवर्सिबल डैमेज होता है लीवर को। खास तौर पे अगर वो अल्कोहल जब लीवर की डिजीज शुरू हो उसके बाद भी अगर वो ना छोड़े और पीता रहे, एडिक्ट बन चुका है उससे नहीं छूट रही, तो उसका लीवर परमानेंटली इनक्योरेबली खराब हो जाता है
जी।
ये दूसरा एक हमारी बॉडी में एक पेनक्रियाज करके ऑर्गन है जो इंसुलिन बनाता है, जो हमारी डायबिटीज़ को प्रिवेंट करता है। डायबिटीज़ जिसका पेनक्रियाज खराब है, इंसुलिन नहीं बनती, उसको डायबिटीज़ हो जाती है। तो पेनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो अल्कोहल ज़्यादा लेने से उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस बोलते हैं
जी।
वो भी ज़्यादा अल्कोहल के सेवन से और लंबे टाइम तक अल्कोहल लेने से होती है। तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस जो है वो भी एक फेटल डिजीज़ है, दैट कैन ऑल्सो किल द पर्सन। तो एक ऑर्गन हो गया लीवर, दूसरा हो गया पेनक्रियास, तीसरा हार्ट। हार्ट का जो मसल है, अगर आप एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ अल्कोहल लेते हैं तो आपका हार्ट का जो मसल है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, हार्ट डायलेट हो जाता है, उसके चैम्बर बड़े हो जाते हैं, हार्ट की इनलार्जमेंट हो जाती है, उसको हम अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं
जी।
और अगर आप मॉडरेट क्वांटिटी से ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो आपका बीपी भी बढ़ जाता है
जी।
तो उससे आपको पैरालिटिक स्ट्रोक भी हो सकता है। और ब्रेन की एक कंडीशन होती है वर्निकेस एनकेफलोपैथी बोलते हैं उसको, उसमें ब्रेन डिजेनरेट करना शुरू हो जाता है
जी।
तो ब्रेन भी अल्कोहल से अफेक्ट होता है, तो लीवर अफेक्ट होता है, पेनक्रियाज अफेक्ट होता है, हार्ट अफेक्ट होता है, ब्रेन अफेक्ट होता है। तो ब्रेन में फाइनर मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें जानी शुरू हो जाती हैं, डिजेनरेशन शुरू हो जाती है ब्रेन की। उसके अलावा कुछ कैंसर्स हैं जो ज़्यादा अल्कोहल लेने से लिंक किए गए हैं
जी।
खास तौर पे फूड पाइप का कैंसर, वो प्रोबेबली अल्कोहल एक इरिटेंट है, वो फूड पाइप को इरिटेट करता है
जी।
स्टमक को इरिटेट करता है, इंटेस्टाइन को इरिटेट करता है, तो उससे इंटेस्टाइन का, रेक्टम का, फूड पाइप का, माउथ का कैंसर तक भी हो सकता है।
अक्सर जिस प्रकार आपने बताया कि ये एक इरिटेंट है और अदरवाइज नॉट गुड फॉर हेल्थ है, लेकिन कई बार कहा जाता है कि कुछ मात्रा में अल्कोहल शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्या है ये वो इसके अच्छे परिणाम जो एक अल्कोहल अगर एक नॉर्मल मात्रा में लिया जाए और वो शरीर में कुछ ना कुछ अच्छी बात भी करता है?
ये सबसे पहले कंसेप्ट आया था जब फ्रांस में लोगों ने देखा कि हार्ट डिजीज की इंसिडेंस और प्रेवलेंस बहुत कम है एज कम्पेयर टू दी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि फ्रांस के अंदर लोग जो हैं लंच और डिनर के टाइम पे काफ़ी लोग जो हैं रेड वाइन लेते हैं
जी।
तो उस समय लोगों ने सोचा कि शायद रेड वाइन उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको हार्ट डिजीज इसलिए नहीं होती
जी।
फिर उसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हुई, अल्टीमेटली ये पाया गया कि जो अगर फीमेल्स एक ड्रिंक तक लें और मेल्स जो हैं वो दो ड्रिंक तक अपने आप को सीमित रख पाएं, तो उसमें एक ड्रिंक का मतलब बेसिकली होता है 12 ग्राम ऑफ एल्कोहल, 12 ग्राम ऑफ एल्कोहल किसी भी फॉर्म में, चाहे वो 12 ग्राम अल्कोहल बियर की फॉर्म में हो तो 360 ml ऑफ बियर के इक्विवेलेंट हो जाती है वो
जी।
वाइन जो है वो 120 ml के इक्विवेलेंट होती है। जो विस्की है वो करीब आप 45 ml का एक ड्रिंक होता है जो 12 ग्राम के इक्विवेलेंट होता है। तो ये इतनी क्वांटिटी तक अगर आप अल्कोहल लेते हैं, मतलब वन ड्रिंक फॉर फीमेल्स, टू ड्रिंक्स फॉर मेल्स, तो वो अगर आपको कोई भी और डिजीज़ नहीं है, अदरवाइज आप हेल्दी हैं, तो इतनी क्वांटिटी में अल्कोहल जो है ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज को की इंसिडेंस को कम करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भी उसको कम करने के लिए आपको अल्कोहल की ही जरूरत है
जी।
लेकिन अगर पेशेंट कोई अल्कोहल लेता है और उसको हार्ट डिजीज है या ब्लड प्रेशर है, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि भी आप एक या दो ड्रिंक से ज़्यादा ना लें
जी।
और पूरे हफ्ते में 7 ड्रिंक से ज़्यादा ना लें, वो एक सेफ लिमिट है। पर जो लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, सेफ लिमिट में नहीं रह पाते हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि वो ना ही इसको शुरू करें तो अच्छा है
जी। डॉक्टर साहब, शराब एक नशा है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस नशे से बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। इस नशे से दूर भी नहीं रहा जा सकता और इस नशे के करीब काफ़ी लोग हैं। इस नशे के बारे में एक बात जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब आपसे, और वो ये है कि इस एडिक्शन की परेशानी शुरू कब होती है, किस लेवल पर आने के बाद ये एक एडिक्शन बन जाता है?
एक्चुअली अल्कोहल में एडिक्शन, तो जो अगर हम ये कहें कि भी एडिक्शन, तो कोई भी क्वांटिटी सेफ नहीं है
जी।
ये अपने माइंड की टेंडेंसी है, कई लोग उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो अगर आप एडिक्ट नहीं बनना चाहते अल्कोहल के, तो बेस्ट एंड द सेफेस्ट मेथड इज कि डोंट स्टार्ट ड्रिंकिंग
जी।
काफ़ी लोगों को हमने देखा है वो शुरू करते हैं एक या दो ड्रिंक से
जी।
बाद में फिर उनको जो है वो एंजॉय करने लग जाते हैं ड्रिंक को, और अल्टीमेटली दे बिकम एडिक्ट
जी।
तो कोई भी सेफ लेवल नहीं है एडिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। तो अगर खास तौर पे आपकी फैमिली हिस्ट्री है एडिक्शन की, या आप पहले एडिक्ट बन चुके हैं, तो इट इज़ बेटर नॉट टू स्टार्ट अगेन।
डेली मानव रचना पर डॉक्टर एसएस बंसल हमें आज अल्कोहल के बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस प्रकार हमने कहा कि एक सेफ लिमिट होती है और एक हफ्ते में 7 ड्रिंक से ज़्यादा अगर लिया जाए तो वो एक एडिक्शन की फॉर्म हो सकती है या वो शरीर के लिए घातक हो सकती है, लेकिन एक अहम सवाल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हफ्ते में शायद एक बार पीते हैं लेकिन अनलिमिटेड पीते हैं, क्या ये एक गलत कंसेप्ट है?
ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं बिंज ड्रिंकिंग
जी।
बिंज ड्रिंकिंग का मतलब होता है कि अगर फीमेल कोई 3 ड्रिंक से ज़्यादा ले ले
जी,
और एक मेल जो है वो अगर 4 ड्रिंक से ज़्यादा ले ले, तो आप चाहे हफ्ते में, चाहे महीने में, चाहे साल में
जी,
एक बार लेने बैठे हैं
जी,
तो अगर आपने बिंज ड्रिंकिंग की यानी कि 4 ड्रिंक से ज़्यादा ले लिए, तो उससे एक्यूट इंटॉक्सिकेशन हो सकती है
जी।
एक्यूट इंटॉक्सिकेशन बहुत डेंजरस चीज़ है, उसमें अगर आपने, आपको पता नहीं चलता, अगर आपने बहुत रैपिडली कंज्यूम कर ली अल्कोहल, तो इट कैन कॉज कोमा एंड डेथ ऑल्सो। ड्राउजीनेस होती है, वोमिटिंग्स होके निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ब्लड में अगर चली गई तो इट कैन कॉज ड्राउजीनेस, इट कैन कॉज अनकॉन्शियसनेस, इट कैन कॉज कोमा, इट कैन कॉज सीजर। सीजर का मतलब है फिट, जिसको हम मिर्गी का दौरा बोलते हैं ना
जी,
उस तरह के दौरे पड़ सकते हैं। तो एस्पिरेट कर सकता है पेशेंट, उसको डिहाइड्रेशन हो सकती है, अल्कोहल से यूरिन ज़्यादा आता है और हमारी स्किन की वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। तो हमारे, अगर मान लो सर्दियों में अगर किसी ने बहुत अल्कोहल ले ली और उसको एकदम फीलिंग ऑफ वार्म्थ आती है, उसको लगता है गर्मी लग रही है उसकी, क्योंकि स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। लेकिन एक्चुअल क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में ठंड है, क्योंकि वेसल्स डायलेट हो गई हैं, तो बाहर की ठंड उसकी बॉडी में चली जाती है
जी।
तो उसको हाइपोथर्मिया हो सकता है, उसको सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूरिनेशन। तो जो एक्यूट इंटॉक्सिकेशन जो है आदमी के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है
जी।
उससे इनकोऑर्डिनेशन होती है, आप अपना स्लरिंग ऑफ स्पीच हो जाती है, आपकी फाइनर मूवमेंट्स चली जाती हैं, आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाता है, आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं
जी।
तो इसलिए बिंज ड्रिंकिंग जो है इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो आप चाहे ये कहें भी 7 ड्रिंक जो है हफ्ते में लेने हैं, मैं एक ही दिन ले लूँ, तो वो सेफ नहीं है
जी। ये एक बहुत ही गलत कंसेप्ट है और आज डॉक्टर एसएस बंसल ने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि 7 दिन धीरे धीरे अगर आप एक एक ड्रिंक पीते हैं तो शायद आप एक एडिक्शन से बच सकते हैं, लेकिन एक साथ अगर 7 ड्रिंक को पीने की कोशिश करेंगे कि एक दिन पार्टी की जाए तो वो बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप 7 दिन बिल्कुल भूखे रहें और उसके बाद 7 दिन का खाना एक साथ आप कंज्यूम करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो शरीर है उसे पचा नहीं पाएगा, उसे हजम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार ड्रिंक के भी मामले में है, अल्कोहल वैसे हर प्रकार में बुरा है और ये हम सब आपसे कहना चाहेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको ये एडिक्शन है या आपको लगता है कि आप ड्रिंक एंजॉय करते हैं, तो इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है। अब बात की जाए विमेन की, यूं तो कहा जाता है कि औरतों को अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कि अल्कोहल कंज्यूम किया जाता है और आज के ज़माने में ये एक फैशन है, तो इस फैशन को भी अगर आप अपनाते हैं तो किस प्रकार अपनाना चाहिए? क्या ये औरतों को अलग तरीके से इफ़ेक्ट करता है और आदमियों को अलग तरीके से इफ़ेक्ट करता है?
जी बिल्कुल, जो फीमेल्स हैं उनकी बॉडी में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है
जी।
जो मेल्स हैं उनमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। अल्कोहल जो है वो वाटर सोलेबल है
जी।
तो अल्कोहल जो है वाटर में जाके डाइल्यूट हो जाती है, तो उसका इफेक्ट कम आता है मेन पे। फीमेल्स में क्योंकि फैट ज़्यादा होता है, वाटर की क्वांटिटी कम होती है, तो उनमें कंसंट्रेशन अल्कोहल की ज़्यादा हो जाती है सेम क्वांटिटी पे। तो एक तो उनका लेवल ऑफ उन पे अल्कोहल डिपेंडेंस बहुत जल्दी होती है, उनको एडिक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। दूसरा उनके ऑर्गन्स को हार्म ज़्यादा करती है बिकॉज ब्लड के अंदर लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है
जी।
उसके अलावा जो फीमेल्स के लीवर एंजाइम, हमारा जो अल्कोहल है वो लीवर में मेटाबोलाइज होता है
जी।
लीवर उसको रिमूव करता है, प्रोसेस करता है अल्कोहल को। जो मेन के अंदर जो लीवर एंजाइम है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है
जी।
फीमेल्स के अंदर लीवर एंजाइम कम क्वांटिटी में होता है, तो वो मेटाबोलाइज उतनी फास्ट नहीं कर पाता
जी।
तो उसकी वजह से भी उनके अंदर अल्कोहल ज़्यादा देर तक स्टे करता है, तो वो उनको ज़्यादा हार्म कर सकता है। फीमेल्स को अल्कोहल ज़्यादा हार्म कर सकती है।
फीमेल को इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जिस प्रकार आदमियों के अंदर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो तो इन ड्रिंक्स को हैंडल कर पाते हैं, लेकिन अगर आप उसी मात्रा में पियेंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए घातक हो सकता है। कहते हैं आज के ज़माने में औरतें आदमियों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, बट बिलीव मी अल्कोहल के मामले में कंधे से कंधा क्या, मुझे तो लगता है ग्लास से ग्लास मिलाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे दूर रहिए और ज़िंदगी भर खुशहाल रहिए। फिलहाल बात करते हैं इसकी कि जब कभी आप ड्राइव कर रहे हैं और अगर आपने ड्रिंक ली है, मान लीजिए कि एक इमरजेंसी आ गई है और आपको ड्राइव करने की ज़रूरत है और आपने ड्रिंक को कंज्यूम किया है, तो कितनी मात्रा आपकी होनी चाहिए, जिससे पहले कि आपको ये सोचना चाहिए कि हमें अपनी गाड़ी के इग्निशन में वो की घुसानी भी चाहिए या नहीं?
अल्कोहल गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है
जी,
क्योंकि अल्कोहल के लिए जो मात्रा आदमी को एक्सीडेंट प्रोन करती है उसकी लेवल बहुत लो है। कार चलाने के लिए कोई लेवल सेफ नहीं है। 0.02% अगर आपके ब्लड के अंदर अल्कोहल है
जी,
उतने से ही आपका बॉडी का रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। अगर मान लो एकदम से कोई अचानक गाड़ी आ गई तो आप तो स्टीयरिंग मोड़ नहीं पाएंगे, आप ब्रेक नहीं लगा पाएंगे, तो आपका रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है
जी।
दूसरा, आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको कोऑर्डिनेशन, जो आपकी बॉडी का बैलेंस है, वो बैलेंस भी अफेक्ट होता है अल्कोहल से। अगर आपकी 0.02% के ऊपर अल्कोहल की कंसंट्रेशन है तो आपका बॉडी का बैलेंस, कोऑर्डिनेशन का जो है वो भी ख़राब हो जाता है
जी।
इसलिए अल्कोहल के लिए मतलब हम तो ये कहेंगे, अगर आप दो ड्रिंक भी कोई पेशेंट लेता है या कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर दो ड्रिंक लेता है, दो ड्रिंक के बाद ये देखा गया है कि एक घंटे के बाद, ज़्यादातर आप खाना खाने बैठे हैं, आपने ड्रिंक लिया, उसके एक घंटे बाद आप खाना खाने के बाद उठ के ड्राइव करना शुरू कर देते हैं
जी।
तो एक घंटे के बाद आपकी ब्लड के अंदर 0.04% अल्कोहल रहती है आफ्टर 1 आवर ऑफ 2 ड्रिंक्स
जी।
तो जब भी आप, ज़्यादातर लोग जो अल्कोहल लेते हैं वो दो ड्रिंक लेते हैं
जी,
दो ड्रिंक तो लेते ही लेते हैं ज़्यादातर लोग, तो दो ड्रिंक लेने के बाद अगर आपका 0.04% एक घंटे बाद है तो उसी समय आपको ड्राइव करना है
जी।
तो इसलिए आपकी बॉडी का रिएक्शन टाइम 0.02% पे ख़राब हो जाता है, तो 0.04 पे तो और ख़राब होगा।
Exactly.
इसलिए जिसने अल्कोहल ली है उसको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए
जी। यहाँ तक कि ड्राइविंग तो क्या, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एडिक्शन का लेवल भी हाई हो जाता है जब आप अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। अल्कोहल के साथ एक और चीज़ इन्वॉल्व है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि खाली पेट अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, खाने के बाद लेना चाहिए, खाने से पहले लेना चाहिए, खाने के साथ लेना चाहिए। बहुत सारी मिसकंसेप्शन हैं अल्कोहल को लेके, क्या इन मिसकंसेप्शन को आप हमारे लिसनर्स के लिए ठीक करना चाहेंगे?
अल्कोहल जो है वो एक इरिटेंट है
जी,
वो आपके स्टमक की वॉल को डैमेज कर सकता है, आपके स्टमक में अल्सर बन सकते हैं, आपके स्टमक में इन्फ्लेमेशन होके रेडनेस होके गैस्ट्राइटिस हो सकती है
जी।
तो इट इज़ सेफर टू टेक अल्कोहल आइदर ड्यूरिंग द मील्स और आफ्टर द मील्स
जी।
वन शुड अवॉइड फास्टिंग, आई मीन ऑन एम्प्टी स्टमक।
यस, एटलीस्ट एम्प्टी स्टमक तो आप कभी भी अल्कोहल कंज्यूम ना करें। और एक और चीज़ जो अल्कोहल से रिलेटेड है और वो है कॉफ़ी। लोग ये कहते हैं कि भाई मैंने अल्कोहल कंज्यूम किया और उसके बाद मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी ली और इससे मेरे अंदर सोबरनेस आ गई, यानी मेरा जो इफेक्ट है अल्कोहल का वो ख़त्म हो गया, क्या ये एक सच्चाई है?
एक्चुअली ये एक मिसकंसेप्शन है। जो कॉफ़ी अगर अल्कोहल लेने के बाद आपको ड्राउजीनेस हो रही है और आपको ड्राइव करना है और आप सोचते हैं मैं कॉफ़ी पी के मेरा माइंड अलर्ट हो जाएगा और मैं ड्राइव कर सकूँगा, तो वो एक आपको फॉल्स कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। उससे आप एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं। बिकॉज इसमें एक तो ये होता है कि कॉफ़ी पीने के बाद आप थोड़ा सा अलर्ट होते हैं, आप और ड्रिंक ज़्यादा ले लेते हैं
जी।
उससे आपकी जो कोऑर्डिनेशन और रिएक्शन टाइम जो है वो अल्कोहल की परसेंटेज अफेक्ट नहीं होती, उससे ब्लड के अंदर जो अल्कोहल कंसंट्रेशन है वो सेम रहेगी, तो उसका ब्रेन पे जो इफेक्ट आना है वो सेम रहेगा। उसके अलावा क्या होता है कि कॉफ़ी भी डायूरेटिक है, डायूरेटिक का मतलब उससे भी यूरिनेशन ज़्यादा होती है, अल्कोहल से भी यूरिनेशन ज़्यादा होती है, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप डिहाइड्रेट हो जाते हो
जी।
तो इसलिए डिहाइड्रेशन से आपको और बॉडी को नुकसान पहुँचता है। और सोबरनेस के लिए तो बेस्ट है कि आप प्लेंटी ऑफ लिक्विड लें ताकि अल्कोहल की डाइल्यूट कर दें, उसको कंसंट्रेशन कम हो जाए, और वेट करें क्योंकि अल्कोहल एक बार बॉडी में चली गई ब्लड में तो लीवर को उसको हैंडल करने में जो टाइम लगना है वो लगना ही है
जी।
तो टाइम इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, यू शुड सिट एंड वेट एंड टिल द अल्कोहल लेवल फॉल्स डाउन विच मे टेक फ्यू आवर्स। तो द बेस्ट सोल्यूशन फॉर बिकमिंग सोबर इज़ टू वेट एंड वॉच एंड बेटर नॉट टू ड्राइव एंड इंटरेक्ट सोशली
जी। देखिए अल्कोहल के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं और उसके बावजूद भी इस एडिक्शन की कहीं कमी नहीं है हमारे समाज में। एक और चीज़ जो आजकल परेशानी है, जहां लेडीज़ ने अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू किया है वहीं वो एक ऐसी लेडीज़ के पास एक ऐसी शक्ति होती है जो शायद ज़माने में या परमात्मा ने किसी और को नहीं दी है, और वो है प्रोजनी की यानी प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी के साथ अल्कोहल का होना क्या ये सबसे घातक है डॉक्टर साहब?
ये बहुत ही मतलब कोई क्वांटिटी अल्कोहल की सेफ नहीं है प्रेगनेंसी में
जी।
जब प्रेगनेंसी में अल्कोहल अगर फीमेल लेती है तो एक कंडीशन होती है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम
जी,
जो कि बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट पैदा करता है
जी।
तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल अगर कोई लेडी अल्कोहल लेती भी है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको बंद कर देनी चाहिए
जी। और क्या ये एक जेनेटिकली ट्रांसफर्ड एडिक्शन भी है?
जेनेटिकली ट्रांसफर्ड एडिक्शन है जिस फैमिली में जेनेटिकली टेंडेंसी है अल्कोहल की एडिक्शन की, उनके अगर बच्चे लेते हैं तो उनमें एडिक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। कई बार ऐसा होता है कि एडिक्ट की फैमिली में बच्चों को एडिक्शन नहीं होती, और कईयों को जिनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं होती उनको एडिक्शन हो जाती है
जी।
तो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, बट येस अगर किसी की फैमिली में एडिक्ट है, कोई अल्कोहल एडिक्ट है, तो उसको बेटर है कि अल्कोहल के एडिक्शन के चांसेस को ज़्यादा हैं, इसलिए उसको अवॉइड करनी चाहिए अल्कोहल। अगर प्रेग्नेंट फीमेल अल्कोहल लेती है तो वो जो है बच्चे पे इस तरह से बर्थ डिफेक्ट होंगे
जी,
लेकिन वो एडिक्ट नहीं बन जाएगा
जी। और क्या है वो बर्थ डिफेक्ट्स जो एक प्रेग्नेंट लेडी अगर फिर भी अल्कोहल कंज्यूम करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसके होने वाले बच्चे पर हो सकते हैं?
उसमें बहुत सारी एक्चुअली बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ या फिजिकल डिफेक्ट आ सकते हैं बच्चे में, तो इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए तो इट इज़ वेरी डेंजरस
जी। डॉक्टर साहब एक अहम सवाल, यूँ तो हमने बताया कि किसको अल्कोहल लेना चाहिए और किसको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, नहीं तो सबको लेना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहना चाहिए और शायद उन्हें तो शराब की बोतल की तरफ भी नज़र नहीं उठानी चाहिए। कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए?
जो हमने अभी बात की प्रेग्नेंट फीमेल्स को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए
जी।
उसके अलावा जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन है उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और अगर आपकी एज 21 से कम है
जी,
तो भी अल्कोहल बिल्कुल नहीं, लीगली भी नहीं ले सकते, वैसे भी नहीं लेनी चाहिए
जी।
उसके अलावा अगर आपके हिस्ट्री है, आपको लिवर डिजीज है या अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर है
जी,
या आपके कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रहते हैं, खासतौर पर अगर ट्राइग्लिसराइड हाई रहते हैं, क्योंकि अल्कोहल से ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, तो ट्राइग्लिसराइड जिसके बहुत ज़्यादा हैं उसको अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। उसके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि अगर आपके हार्ट मसल वीक है और आपको अरिदमियाज है, धड़कन की प्रॉब्लम है
जी,
तो भी आपको अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। तो इस तरह के लोग जो हैं उनके लिए एक बूंद भी अल्कोहल की अलाउड नहीं है
जी। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अहम जानकारी दी अल्कोहल से रिलेटेड कि किस प्रकार अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, और अगर मान लीजिए कि ज़रूरत ही पड़े या माहौल ही ऐसा हो और आपको लेने की ज़रूरत पड़े तो कितना लेना चाहिए। जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स के लिए एक खास संदेश अल्कोहल से रिलेटेड आपकी ओर से।
अगर मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि भी अल्कोहल से हार्ट डिजीज़ और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में थोड़ा सा साइंटिफिक स्टडीज़ के हिसाब से कुछ एडवांटेज देखा गया है कि उनमें रिस्क ऑफ इस्कीमिक स्ट्रोक यानी कि उनको हार्ट अटैक या पैरालिटिक स्ट्रोक होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू दी नॉन अल्कोहलिक्स। लेकिन मेरा इस बात का मतलब ये ना निकाला जाए कि भी जो लोग अल्कोहल नहीं लेते उनके पास प्रिवेंशन के लिए ये एक अच्छा बहाना हो गया। मैं ये संदेश नहीं देना चाहता, मैं ये संदेश देना चाह रहा था कि भी सिगरेट जो है, स्मोकिंग जो है, हार्ट पेशेंट के लिए ज़्यादा हार्मफुल है एज कम्पेयर टू माइल्ड टू मॉडरेट ड्रिंकिंग। हम हार्ट पेशेंट को बोलते हैं कि तुम स्मोकिंग बंद कर दो, एक भी सिगरेट आप ना पियो, अल्कोहल आप माइल्ड टू मॉडरेट ड्रिंकिंग तक अगर आपने आपको कंट्रोल कर सकते हो तो आप ले सकते हो, नहीं कर सकते तो बेटर क्विट।
जी, और डॉक्टर साहब क्या मौसम का भी एक फर्क पड़ता है अल्कोहल पर?
अल्कोहल लेने के बाद आपकी बॉडी जो है, यू शुड अवॉइड एक्सपोजर टू कोल्ड।
जी,
तो सर्दियों में खास तौर पे अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो आप अपने बॉडी को अच्छी तरह कवर करके और वार्म एटमॉस्फेयर में बैठ के, मतलब आपकी सराउंडिंग टेम्परेचर आपका ठीक होना चाहिए।
जी,
बाहर बैठ के ठंड में अल्कोहल लेना विद मिनिमम क्लोदिंग इज नॉट एडवाइजेबल।
जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि शराब से दूर तो रहा नहीं जा सकता है, जिन लोगों को इसकी लत पड़ जाती है वो इससे दूर नहीं रह पाते हैं, लेकिन डी एडिक्शन कैसे किया जा सकता है? क्या इसके भी कोई खास तरीके हैं जिससे एक इंसान से शराब की ये जो लत है उससे दूर किया जा सकता है?
शराब की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको अगर उसकी आदत पड़ गई तो आप उसके बिना नहीं रह सकते।
जी,
और उसका कारण ये है कि जैसे ही आप छोड़ने की कोशिश करते हो, आप छोड़ना चाहते हो, छोड़ने की कोशिश करते हो तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, तो आपको बेचैनी, घबराहट, वोमिटिंग, अनइजीनेस, रेस्टलेसनेस और क्रेविंग शुरू हो जाती है।
जी,
तो इसलिए आजकल उसमें मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ती है, या तो डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती होना पड़ता है या हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। जिनको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको डी एडिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो डी एडिक्शन के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, उनसे आपकी क्रेविंग कंट्रोल की जा सकती है, विड्रॉल सिम्टम्स कंट्रोल किए जा सकते हैं। क्लोनेजीपाम इज़ वन ऑफ द ड्रग जो हम इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं।
जी,
उसके अलावा ड्रग्स हैं जिनसे आपको शराब की एंजॉयमेंट ख़त्म हो जाती है, जैसे डाइसल्फिराम मेडिसिन हैं, वो आप पेशेंट जो जिस चीज़ के लिए अल्कोहल लेता है अगर वो डाइसल्फिराम टैबलेट उसको दे दी जाए तो वो ही कैन नॉट एन्जॉय अल्कोहल, उसको अल्कोहल लेते ही रिएक्शन आता है, उसको एकदम बॉडी में रैश हो जाएगी, रेडनेस आ जाएगी, एकदम अनइजीनेस, वॉमिटिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, तो वो ही स्टार्ट्स हीटिंग अल्कोहल।
जी,
तो डी एडिक्शन के लिए हम एक तो विड्रॉल सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन देते हैं, एक अल्कोहल से उसको अल्कोहल वो डिसलाइक करे उसके लिए एक मेडिसिन देते हैं डाइसल्फिराम। तो डी एडिक्शन इज़ पॉसिबल। तो जो लोग भी शराब छोड़ना चाहते हैं और नहीं छोड़ पा रहे हैं उनको डी एडिक्शन की हेल्प लेनी चाहिए, चाहे साइकेट्रिस्ट से, चाहे हॉस्पिटल से, चाहे डी एडिक्शन सेंटर से। वो शराब छोड़ना चाहें तो मेडिकल एड से वो छोड़ सकते हैं, डी एडिक्शन इज़ वेरी मच पॉसिबल।
जी, ये एक बहुत ही खास जानकारी थी जो आप तक पहुंचाई मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट विद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और डॉक्टर SS बंसल ने। फिलहाल तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी डॉक्टर SS बंसल का कि वो रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में आए और सभी को दी इतनी बेहतरीन जानकारी।
थैंक यू भावना।